ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 10 श्लोक संख्या 39 और 40। 40 बोर्ड पे है, 39 का केवल हम श्लोक और अनुवाद पढ़ेंगे। शिरोभिरुद्धूत कीरीट कुंडलै संरम्भदिद्भिः परिदष्ट दच्छन्दैः महाभुजै साभरणै सहायुद्धै साप्राष्टाभूकरभोरुभिर्बभौ। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, युद्ध के दौरान रणभूमि वीरों के कटे सिरों से पट गई, उनकी आंखें अब भी घूर रही थी और क्रोध से उनके दांत उनके होठों से लगे हुए थे। इन छिन्न सिरों से के मुकुट तथा कुंडल बिखर गए थे, इसी प्रकार आभूषणों से सचेत तथा विविध हथियार पकड़े हुई अनेक भुजाएं इधर उधर बिखरी पड़ी थी और हाथी की सूंडों जैसे अनेक टांगे तथा जांघे भी इसी तरह बिखरी हुई थी। अब आज का श्लोक जो कि श्वेत पट पे लिखा हुआ है, कबन्धास्तत्र चोत्पेतुः पतिता स्वशिरोक्षिभिः उद्यता युद्ध दोर्दण्डैः आधावन्तो भटान् मृदे। कबन्धा धड़, तत्र वहां युद्ध भूमि में, च भी उत्पेतुः उत्पन्न पते गिरा हुआ, स्वशिरः अक्षिभिः सिर की आंखों से, उद्यत उठाए आयुध हथियारों से युक्त, दोर्दण्डहि जिसकी भुजाएं आधावंतः की ओर दौड़ती हुई, भटान सैनिक मृधे युद्ध भूमि में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, अनुवाद दोहराए कृपाकर। उस युद्ध भूमि में शीश रहित अनेक धड़ उत्पन्न हो गए थे, वे प्रेत तुल्य धड़ अपने हाथों में हथियार लिए पड़े हुए सिरों की आंखों से देखकर शत्रु सैनिकों पर आक्रमण कर रहे थे। तात्पर्य सुनिए श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध क्षेत्रों में मारे गए भी तुरंत ही प्रेत बन गए थे, यद्यपि उनके सर उनके शरीरों से कटकर अलग हो गए थे किंतु नए धड़ पैदा हो गए थे। धड़ का मतलब ट्रंक, शरीर, और ये नए धड़ कटे हुए सिरों की आंखों से देखकर शत्रु पर आक्रमण करने लगे। दूसरों शब्दों में युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अनेक प्रेत उत्पन्न हो गए, जिससे युद्ध क्षेत्र में अनेक नए धड़ प्रकट हो गए। ओम अज्ञान तिमरांधस्य ज्ञानाजनाशलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह श्लोक और तात्पर्य जो हमने पढ़ा तो बहुत दुविधा में आ गए हम कि क्या कहें इस श्लोक के बारे में। और तात्पर्य में युद्ध का वर्णन हुआ है, ना हमने कभी युद्ध किया है किसी से, ना कभी हम क्षत्रिय के रूप में कार्य किए हैं, और बड़ा कठिन है। भागवत में कई ऐसे श्लोक है जिसको पढ़कर लगता है कि क्या कहा जाए, कि क्या बोला जाए और क्या समझा जाए उसमें से। प्रभुपाद जी के तात्पर्य ना हो तो दिमाग में तो कुछ भी नहीं घुसेगा, ऐसा लगेगा कि बस कोई श्लोक संस्कृत का उच्चारण कर रहा है बस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, लेकिन देवताओं तथा असुरों के बीच में संग्राम, और इसकी इसका परिचय देते हैं अध्याय का कि अध्याय कैसे प्रारंभ हुआ है। सारांश देखिए, देवता और असुरों के बीच में ये संग्राम तो हमेशा चला आ रहा है सृष्टि के प्रारंभ से ही, और चलता रहेगा जब तक ये सृष्टि है, और जब तक ये सृष्टि का संहार नहीं हो जाता है तब तक जो है ये देवासुर संग्राम युद्ध चलता ही रहेगा, और चलता ही रहेगा। अभी भी चल रहा है, अभी भी बहुत सारे असुर हैं। आप पूछेंगे कहाँ, हमारे अपने ही भीतर है बहुत सारे असुर, और की संख्या इतनी ज्यादा है कि बाहर और कोई असुर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उसी का वध करते करते ही पूरा जीवन बीत जाएगा, तभी नहीं मार पाएंगे पूरी तरह से। तो देवता और असुरों के बीच में यह संग्राम चलता रहा है, और क्षीर सागर के तट पर आप जानते हैं कि देवता और असुर एकत्रित हुए थे, समुद्र मंथन हुआ था अमृत की आशा से कि अमृत किसको मिलेगा। देवतागण चाहते थे कि उनको अमृत मिले, और असुरगण चाहते थे कि उनको अमृत मिले। असुरगणों को अगर अमृत मिलता है तो उसका दुरुपयोग करेंगे, और देवताओं को अमृत मिलेगा तो उसका सदुपयोग होगा। तो देवतागण जो है कौन है, जो कृष्ण के भक्त है, भगवान के भक्त है, विष्णु के भक्त है, उनकी आराधना करते हैं, उनके सत्ता के अनुसार कार्य करते हैं। देवतागण भी गलती करते हैं। अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में कई जगह पर देखेंगे देवतागण गलती करते रहते हैं, असुरगण भी गलती करते हैं, तो दोनों में भेद क्या है, और दोनों ही गलती कर रहे हैं। गलती करना बद्ध जीव का लक्षण है, तो देवतागण क्योंकि मुक्त अवस्था में नहीं है अधिकांश जो है, तो उनको भी गलती करना ही होगा। असुरगण तो गलती करते ही है, तो दोनों में भेद क्या है, वॉट इज द डिफरेंस, वॉट इज द डिफरेंस। गलती करने के बाद भगवान की शरण लेते हैं, गलती करने के बाद अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, गलती करने के बाद और क्या होता है बताइए, एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, यानी कि वो अधिकार को स्वीकार, अधिकारी को स्वीकार करते हैं, यानी भगवान का, भगवान की जो सत्ता है उसको स्वीकार करते हैं। गलती को सुधारने का उनको मौका मिलते ही वो सुधारने का प्रयास करते हैं, सुधरने का प्रयास करते हैं। ये डिफरेंस है, यानी कि जिन्होंने प्रमाणिक अधिकारी को स्वीकार कर लिया, भगवान की सत्ता को जिन्होंने स्वीकार किया हुआ है, वो है देवता गलती होने पर भी, यानी कि सुधरना चाहते हैं तो फिर भी उनका देवता कहा जाए। और सुधरना ही नहीं चाहते हैं, जिनका कोई अधिकारी नहीं है, जिनकी कोई सत्ता नहीं है, पूर्ण रूप से जो स्वतंत्र है, मनमाने ढंग से चलते मनोरथ के नासी धावतो भाई, तो वो असुर के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो असुरगण जो है अब देवताओं के द्वारा जो है देवता लोग जो है उनको कृपा मिल गई भगवान की मोहिनी अवतार में। मोहिनी अवतार का वर्णन हुआ है इस प्रसंग में, मोहिनी अवतार में भगवान ने देवताओं को अमृत दिया, अमृत का पान किया देवतागणों ने, और राहु और केतु जो देवताओं के पक्ष में आके बैठ गए थे, सूर्य और चंद्र के इशारे से भगवान ने क्या किया, उनका गर्दन उड़ा दिया, उनका संहार हो गया, अमृत यहीं तक पहुंचा। इस कारण से अमृत क्योंकि यहां तक पहुंचा, अमृत यहां तक है, यहीं तक जीवित है, और इस कारण से आज भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगा रहता है। नुकसान किसको होता है, हमें होता है। असुर ग्रहण जब है, राहु और केतु जब आक्रमण करते हैं, सूर्य के ऊपर आक्रमण करते हैं या चंद्रमा के ऊपर आक्रमण करते हैं, तो दोनों ही स्थिति में परिस्थिति में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, उससे किसी को लाभ नहीं मिलता, नुकसान ही होता। तो देवतागण असुरों का जब युद्ध होता है, यानी कि उसका परिणाम उसका प्रभाव इन पृथ्वी के जीवात्माओं के ऊपर भी होता है, हमारे ऊपर भी होता है। ऐसा नहीं कि देवलोक में सब जो है उपभोगी कर रहे हैं और वहां पे केवल सुखी सुख है, पेतम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम, और वहां पे कोई दुख है नहीं, बड़े आनंद में रहेंगे, कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, इस भ्रम में ना रहे हम लोग। वहां जो असुर आक्रमण करेंगे वो साधारण असुर नहीं होंगे, देवताओं के ऊपर जब आक्रमण करेंगे तो कौन होंगे, या तो देखेंगे देवता लोग परेशान हो गए। अभी देवताओं और असुरों के बीच में जब संग्राम शुरू हो गया, अब युद्ध शुरू हो गया, और क्योंकि गरुड़ जी में बैठ के भगवान तो चले गए, अमृत वितरण करके वो चले गए, लेकिन असुर लोग जो है चुप नहीं बैठे, उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, हम फिर से आक्रमण करेंगे। तो देवताओं के ऊपर फिर से आक्रमण किया उन्होंने, देवताओं पर आक्रमण जो किया तो देवताओं की तरफ से जो है इंद्र युद्ध कर रहे थे, बलि महाराज के साथ, बलि महाराज को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था, और बलि महाराज के साथ युद्ध हुआ था इंद्र का, और बाकी जो थे वायु और वरुण और अग्नि, ये जो है और असुरगण के जो नायक है उनके साथ युद्ध कर रहे थे। ऐसे करते करते युद्ध करते करते जो है युद्ध करते करते जो है असुरगण परास्त हो गए, फिर से असुरगण हार गए। तो असुरों को तो हारना ही है, जब तक भगवान जो है देवताओं की रक्षा करते रहेंगे तब तक जो है असुरगण जो है परास्त होते रहेंगे, उनकी कभी विजय हो नहीं सकती है। तो इस तरह से फिर जो है ये असुरगण जो है चिंता में पड़ गए। अब उन्होंने जो है माया जाल अपना जो है प्रकट किया, और भौतिक युक्तियों के द्वारा नाना प्रकार के माया जाल बिछाए उन्होंने देवताओं को परेशान करने के लिए, क्योंकि वो मृत्यु से बचना चाहते थे, नहीं तो मृत्यु हो जाती उनकी। और इस कारण से जो है देवता लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और कोई उपाय नहीं रहा उनके पास, जब माया जाल फैला दिया इतना ज्यादा असुरगणों ने, तो फिर देवतागण किसके पास गए, भगवान की शरण ली उन्होंने। फिर से देवतागणों ने फिर से भगवान की शरण ली। जब भी कोई समस्या आती है, इस तरह से कंस ने जो है अत्याचार फैलाया पूरी पृथ्वी में, केवल इस सूचना मिलने पर क्या देवकी की जो अष्टम गर्भ है वो उनके मृत्यु का कारण बनेगी, इस कारण से इतना अत्याचार फैला दिया था पूरी पृथ्वी में, और देवतागण बहुत चिंतित हो गए। पृथ्वी जो है गाय गो माता का रूप लेके जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंची, और ब्रह्मा जी जो है क्षीर सागर में पहुंचे, जो कभी जब भी समस्या आती है क्षीर सागर में जाते हैं, वही है पिटीशन देने का स्थान, वहीं पे एप्लीकेशन जो है दिया जाता है क्षीर सागर में। क्षीर सागर बहुत नजदीक है, ध्रुव लोक के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, आपको जाना तो वहां भी जा सकते हैं आप, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे फिलहाल अभी। तो क्षीर सागर के तट पे मिल्क क्वेश्चन के पास वहीं पे जो है अपना पिटीशन डालना पड़ता है, और वही सुनवाई होती है। दिखाई नहीं देंगे आपको भगवान, अदृश्य ही रहेंगे, केवल उनकी वाणी सुनाई देगी, वो भी किसको, सबको नहीं, केवल ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को अधिकार प्राप्त है, वो हृदय के अंतकरण में वो क्या भगवान की वाणी को सुन पाते हैं, और भगवान बता रहे हैं ब्रह्मा जी को, ये सब मैं जानता हूं पहले से, आप लोग प्रार्थना तो कर लिए बहुत पुरुष सूक्त से, आप सबने मेरी प्रार्थना की है, स्तुति की है, वो सब ठीक है, लेकिन पहले से ही जानता हो कि क्या चल रहा है पृथ्वी में, कंस का अत्याचार, इसके बारे में पूरी जानकारी है। तो इसलिए भगवान बता रहे कि आप सब देवतागण जो है, यदु कुल में जन्म लीजिए, वृश्चि वंश में जन्म लीजिए, पहले से प्रकट हो जाइए, हम आने वाले हैं, तैयारी करिए आप सब। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजामि हम। तो भगवान तो हमेशा आएंगे, जब तक धर्म की ग्लानि होगी तब तक भगवान आएंगे, देवताओं की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधूनां, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। तो देवताओं का तो हमेशा उन्होंने साथ देना ही है, और इस तरह से फिर भगवान आए और भगवान की जब शरण ली तो भगवान ने जो है फिर क्या किया, उस माया जाल को सबको ध्वस्त कर दिया, माया जाल को ध्वस्त कर दिया, और फिर कई कई जो है असुरों को मारा, जैसे कालनेमी थे, माली, सुमाली, माल्यवाण, ये बड़े बड़े जो असुर गण थे, और कालनेमी ही बाद में जो है फिर कंस बने, तो भगवान ने कालनेमी का वध किया। तो इस तरह से जो है देवता गण जो है वो सब मुक्त हो गए, हर प्रकार के खतरे से उनको छुटकारा मिल गया। तो देखिए ये बात उसमें छह श्लोक के अगर माध्यम से समझने का प्रयास करें कि ऐसा नहीं है कि अगर आप युद्ध भूमि में मारे जाएंगे तो आपको स्वर्गलोक की ही प्राप्ति होगी या फिर धाम की प्राप्ति होगी, उद्देश्य क्या है युद्ध का ये जानना बहुत जरूरी है। अगर युद्ध का हम उद्देश्य नहीं जानते, युद्ध का अगर उद्देश्य स्वार्थ पूरा करना है, अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करना है, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको संगति नहीं प्राप्त होने वाली है, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। यहां पर देवतागण जो है असुरों के पर आक्रमण किए थे और असुरों का श्रृंगार किया, गर्दन उड़ा लिया उनका, लेकिन फिर क्या वो भूत बन रहे, देखिए वो तो भूत बन गए। भगवान जब किसी का वध करते हैं तो वो भूत नहीं बनता है, उसका उद्धार हो जाता है, वो मुक्त आत्मा हो जाता है। कितने देखिए वृंदावन में मथुरा जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में कितने सारे असुरों का वध किया, बचपन से ही छठे दिन से ही शुरू कर दिया, पूतना का वध किया, कितने असुरों का वध कर दिया, सट्टासुर का वध किया, त्रणावध का वध किया, नहीं कितने सारे असुरों का वध कर दिया, अकासुर, बकासुर, बत्सासुर और प्रहलाद जी ने प्रलंबासुर, असुरों का वध की लाइन लगा दी उन्होंने। 11 साल में प्रभुपाद जी कहते हैं लंच टाइम से पहले 2 से अधिक असुरों का वध करते थे, और 11 वर्ष के अंदर अंदर भीतर भीतर 8,000 से अधिक असुरों का वध कर दिया भगवान कृष्ण वृंदावन में। प्रभुपाद जी लंच टाइम से पहले करते थे उसे, उसके बाद फिर भोजन लीला होती थी, प्रसाद ग्रहण करते थे, क्रीड़ा, ये लीला भगवान की है, असुरों का वध किया, असुरों का उद्धार कर दिया, पूतना को माता का स्थान दे दिया गोलोक धाम वृंदावन में। बताइए ऐसा होगा कभी किसी को मार के आप जो है गोलोक धाम वृंदावन में आप माता का स्थान दे सकते हैं? कोई है यहां पे? कोई नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, एक भी जीव नहीं है जो ऐसा कर सके। ब्रह्मा जी से लेकर पाताल लोक तक, ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके मारे जाने पर आपको गोलोक धाम वृंदावन में माता का स्थान मिलेगा। ऐसा होता कभी? ऐसा कभी नहीं होता है। तो देवतागण क्योंकि बद्ध जीव है, वो किसी अगर मारते हैं तो उसमें उसको विशेष लाभ नहीं होने वाला है, या तो भूत बन गए या तो भूत बन गया है। तो इसलिए ये प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक देखिए कुछ बुद्धिमान लोग जो है दोनों दलों से कृष्ण भावना भावित जब तक नहीं होना चाहेंगे तब तक ये युद्ध चलते रहेंगे। शांति का प्रस्ताव कभी नहीं रखा जा सकता भौतिक धरातल पर, भले आप संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशंस कहने और वहां पे हम बड़े बड़े रेजोल्यूशन पास करें, पॉलिसी निकाले विश्व शांति के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जब तक हम देहात्म बुद्धि में रहें। देहात्म बुद्धि में जब तक रहेंगे तब तक हम लोग ये युद्ध करते ही रहेंगे, और ये युद्ध जो है हमारे भीतर से ही शुरू हो जाए, हमारे अपने ही भीतर इतने सारे शत्रु हैं, बाहर कहां ढूंढे और शत्रुओं को, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो 6 शत्रु है ये कूट कूट के भरे हैं हम सबके भीतर, कुछ लोगों में ज्यादा है कुछ लोगों में कम है, भक्तों में भी है जो अभी तक स्वरूप सिद्ध नहीं हुए हैं, वो भी जो है संघर्ष कर रहे हैं इन असुरों को लेकर, रोज वध कर रहे हैं। हमारे पास भी देखिए लड़ने के लिए बहुत सारे बॉम्ब्स हैं, हमारे पास भी अस्त्र है, साधु पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती ही सोमे दिशा। तो बुद्धिमान लोग जो है इस कलयुग में क्या करते हैं, वो संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से युद्ध करते हैं, और उनके पास है कितना सारे बुलेट्स हमारे पास, 108 बुलेट्स रहते हैं हमारे पास, ट्रिगर दबाना होता है बस, और जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब इसमें देखिए, अगर ये ट्रिगर दबा दिया अपने महामंत्र का और चलाते भी बिल्कुल ऐसे ही है, बंदूक की तरह चलाते हैं, इसमें दो लोग मारे जाते हैं, पता है कौन कौन? एक तो सुनने वाला है और जो सुनने वाला है और जो सुना रहा है, दोनों के भीतर जो है असुर मारे जाते हैं। तो इस कलयुग में जो है असुरों को मारने के लिए हमें बॉम्ब की आवश्यकता नहीं है, इस हरिनाम की आवश्यकता है। ये हरिनाम से जो है असुरों को मारेंगे हम लोग, और खुद के अंदर जितने असुर हैं राक्षस हैं उनका वध हम लोग पहले करेंगे। और हम जब मारेंगे ना, भक्त जब मारेंगे, जब वैष्णव मारेंगे हरिनाम के माध्यम से, जब असुरों को मारेंगे तो जानते हो बुद्ध नहीं बनेंगे लोग, भूत नहीं बनेंगे। संकीर्तन यज्ञ जब आप करने जाएंगे सड़क पर तो आपको क्या लगता है, भूत बनेंगे लोग? भूत नहीं बनेंगे, लेकिन जो भूत है उनको भक्त बनाएंगे। जो भूत है जैसे हनुमान चालीसा में आप सुना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी भी क्या कर रहे हैं, वो राम का नाम ले रहे हैं, तभी तो संभव हो पा रहा है। हनुमान जी क्योंकि राम का नाम ले रहे हैं, तो राम का नाम जो सुनेगा वो जितने भी भूत हैं सारे खत्म हो जाएंगे, भूत से भक्त बन जाएंगे सीधे, प्रमोशन। और क्या चाहिए होता है आपको, इसे जहां जहां पे भी प्रॉपर्टी, जब विदेशों में गए वहां पे कुछ टेम्पल पे भूत थे पहले से, और वहां पे प्रॉपर्टी का संकीर्तन करो, संकीर्तन किया सारे भूत भाग गए प्रॉपर्टी के कीर्तन की वजह से। कई बार होता है हम भी कीर्तन करते हैं भूत भागते ही नहीं। शुरू शुरू में जब हमारा मंदिर बन रहा था दिल्ली मंदिर साथी का, तो वहां पे भी भूत थे और हम संकीर्तन करते थे, भूत भागते ही नहीं थे उसका। लेकिन और कोई उद्देश्य हो सकता है कि भूत भी भक्तों का संग चाहते हैं, भूत भी भक्तों का संग चाहते हैं, इसलिए भक्तों को मारते नहीं है, वो भक्तों के चरण पकड़ते रहते हैं, जोर जोर से पकड़ लेते हैं भक्तों के चरण और भी संकीर्तन का लाभ उठाते हैं। बेचारे कहां जाए वो, उनको भी तो सहारा चाहिए। दूसरे पशु पक्षी चिड़िया कबूतर भूत सब आते हैं हमारे मंदिर में महाप्रसाद ग्रहण करने के, सबको लाभ मिलता है। तो ये समझने वाली बात है कि कृष्ण भावना भावे जब तक नहीं होंगे हम कभी भी भक्त नहीं बन सकते हैं, हम भूत ही बने रहेंगे। सब भूत ही तो है, माया के वशीभूत जो भी है वो सब भूत है, हॉन्टेड है बिल्कुल। इसलिए गुरु लगे रहते हैं दिन रात खदे की तरह काम कर देते हैं, ऐसे लगता ही है देखकर लोगों को समाज में कि भूत पकड़ा हुआ है, भूत ही तो पकड़ा है। प्रभुपाल के गुरु भाई ने बताया, बहुत सुंदर बात बताई थी कि श्रील प्रभुपाल ही वॉज ऑल्सो हॉन्टेड But how? He was haunted by the instructions of the spiritual master. तो प्रभुपाल जी को भी भूत पकड़ा था, कह दिया कृष्ण भावना का भूत। और ऐसा ये भूत है जो पकड़ लेगा अगर किसी को, आप बस कृष्ण प्रेम में पागल हो जाए। और वो जो भूत पकड़ा प्रभुपाल जी को, उनकी गुरु की जो आज्ञा थी वही था उनका भूत। और ये जब हॉन्ट होकर, he was haunted. इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, उनके गुरु महाराज का ये इंस्ट्रक्शन जो मिला हो तो उसी से हॉन्टेड हो गए हो। और उस आवेश के कारण जो है प्रभुपाद जी इतना कम समय में इतना बड़ा चमत्कार किया उन्होंने। तो प्रभुपाद ने एक जगह बोला है, प्रभुपाद ने कहा एक जगह एक लेक्चर में, प्रभुपाद कहते हैं देयर इज नो वॉर देन वी शैल बी हैप्पी। हम ऐसा सोचते हैं कि अगर युद्ध नहीं होगा तो हम बड़े सुखी रहेंगे, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया तो दिक्कत हो सकती है। प्रभुपाद ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो भारत और पाकिस्तान से ही शुरू होगा। भारत जो है सेना नायक जो है से वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कुछ वर्षों पहले, उन्होंने कहा कि हमें अगर आज्ञा मिल जाए राष्ट्रपति से 60 घंटे में हम इनको नक्शे से हटा देंगे। किनको जान समझ, आप बताइए, सुनिए बस, आगे मत बोलेगी कौन, आप सुन लीजिए बस। 60 घंटे में उन्होंने कहा कि हम नक्शे से हटा देंगे इनको, आप बताइए किनके लिए कह रहे हैं। तो ये दावा वो लोग ले रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर युद्ध होगा तो जो है समस्या होगी। अभी हिटलर जब था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कलकत्ता में प्रभुपाद जी कहते हैं एक व्यापारी था, उसने बहुत पैसा कमाया, उसने कहा हिटलर की पूजा करता था, अगरबत्ती जलाता था हिटलर के सामने, वो घंटी भी बजाता था, अगरबत्ती जलाता था, बोलते ये क्या कर रहे हो, हिटलर की पूजा क्यों कर रहे हो? मतलब इसी हिटलर की वजह से आज मैं करोड़पति बना हूं, विश्व युद्ध जो हो रहा है इसी के कारण हो रहा है, मैं इसकी पूजा करूंगा, यही मेरे स्वामी है, यही मेरे प्रभु है। हिटलर इतना खतरनाक था, हिटलर इतना शक्तिशाली था, जब वो टैंक चलाता था तो गड्ढे, बहुत गड्ढे होते थे माली रस्ते में, उन गड्ढों में हजारों हजारों सैनिक जो है लेट जाते थे ताकि जो है टैंक बड़ी आसानी से जा सके। हिटलर वो हिटलर इतना पावरफुल था, लेकिन कहने का मतलब है कितने सारे वॉर्स हो गए, नेपोलियन की तरह हो गया, हिटलर के द्वारा हो गया, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आए, विश्व के बड़े बड़े योद्धा आए, सब कैसे मारे गए, कोई नहीं बचाया आज तक संसार में। कितने युद्ध हो चुके हैं, विश्व युद्ध हो चुके हैं, और सबसे बड़ा युद्ध तो हुआ है महाभारत का युद्ध, महाभारत का युद्ध है, इससे बड़ा युद्ध जो है आज तक नहीं हुआ है। हम पढ़ रहे थे महाभारत के युद्ध के बारे में कि इसमें पांडव और कौरवों के बीच में बताया गया है कि कौरवों की तरफ से 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों की थी 7 अक्षौणी सेना। 18 नंबर बड़ा ही अद्भुत नंबर है, 18 अध्याय भगवद गीता में 18 दिन के लिए युद्ध हुआ और 18 अक्षौणी सेना थी, बताइए सब कुछ 18 ही 18 है। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी 8+1 9 जो होता है वो भी एक वॉर का जो है ये एक संकेत है, नंबर 9। तो यहां पे क्योंकि नंबर 9 बेसिकली उसमें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये युद्ध को जो है संकेत देता है। तो 18 जो है 18 अक्षौणी सेना, यानी कि 11 जो है कौरवों की तरफ से और 7 अक्षौणी सेना जो पांडवों की तरफ से। अब देखिए पांडवों की तरफ से रथ पे बैठे हुए जो सैनिक थे वो कितने थे, 1.5 लाख, ध्यान से समझिएगा इस बात, और कौरवों की तरफ से जो सैनिक थे वो करीब 2.5 लाख। कौरवों की सेना अधिक थी, संख्या ज्यादा थी उनकी। हाथी में बैठे हुए जो सैनिक थे कौरवों की तरफ से और पांडवों की तरफ से 1.5 लाख, और कौरवों की तरफ से जैसे वो 2.5 लाख थे। और जो घोड़े में बैठे हुए थे कैवलरी, घोड़े में बैठे हुए जो सैनिक थे 4.5 लाख सैनिक थे पांडवों के, और कौरवों के कितने सैनिक थे घोड़े में बैठे हुए 7.5 लाख थे, 7.5। और जो सैनिक जो पैदल चलते थे फुट सोल्जर्स वो करीब इन्फेंट्री जिसको कहते हैं 7.5 लाख थे पांडवों की तरफ से और 12.5 लाख थे कौरवों की तरफ से। ये सब मिला के लगभग 40 लाख से अधिक जो है सैनिक हुए थे, ये सिर्फ पांडव और कौरव सेना बस, उसके अलावा कितने सारे योद्धा थे, कितने सारे सैनिक थे, कितने सारे जो है और भी आर्मी थी, ये सब मिला के युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने घोषणा की थी, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि 1,66,20,000 सैनिक मारे गए महाभारत के युद्ध। 64 करोड़ बोलते 64 करोड़ गलत है, ये असली जो है फिगर है तो महाभारत में जो लिखा है। युधिष्ठिर महाराज ने अनाउंस किया कितने सैनिक मारे गए, 1,66,20,000 सैनिक मारे गए महाभारत के युद्ध में। बताइए इतने सारे सैनिकों को मार दिया, इतने सारे योद्धाओं को मार दिया, और सभी का कारणों के कारण कौन है, कृष्ण है। कृष्ण की इच्छा थी, उनकी सर्वोपरि इच्छा थी महाभारत का युद्ध हो। हालांकि भगवान ने प्रस्ताव रखा हस्तिनापुर के कौरवों के सामने दुर्योधन का, कहा अभी भी मौका है, पांडवों को 5 गांव दे दो केवल, और अधिक नहीं चाहिए उनको। दुर्योधन ने कहा कि जो सुई की जो नौ के बराबर, यानी खड़ी हुई सुई के नौ के बराबर, एक लेटी हुई सुई भी हो सकती है, अरे खड़ी हुई सुई की नौ के बराबर भी मैं इसको जमीन नहीं दूंगा इनको। दुर्योधन को प्रस्ताव रखा था, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए इसी हस्तिनापुर में जहां बैठे हैं न्यू दिल्ली। तो ये उसके बाद भी दुर्योधन ने कहा नथिंग डूइंग, ठीक है फिर हम मिलेंगे युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में मिलते हैं, वहीं पे फैसला होगा। महाभारत के युद्ध में इसको हालांकि कहा गया धर्म युद्ध है, लेकिन धर्म युद्ध में बहुत सारे नियम है। अब आपको बता दें क्या क्या नियम है, धर्म युद्ध का मतलब क्या होता है समझे पहले। यानी कि आपको इससे पता जाएगा कि जितने भी युद्ध हो रहे हैं आज के समय में सब धर्म के युद्ध हो रहे हैं, धर्म नाम की चीज नहीं। यहां तक कि कुरान तक में बताया गया है, हमने सुना था एक मौलवी से, एक हम गए थे इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो वो कह रहे थे कि यहां तक कि कुरान में लिखा हुआ है कि जब आपको किसी से युद्ध करना है तो उसका ऐलान करना होगा, पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी कि हम युद्ध करना चाह रहे हैं, युद्ध प्रारंभ हो, युधिष्ठिर महाराज ने महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले धर्म युद्ध के नियम बता दिए उन्होंने शुरू करने से पहले कि ये नियम है, युद्ध के प्रिंसिपल ये है, नियम है, और अधिकांश नियम तोड़े गए थे महाभारत के, और धर्म युद्ध की तरफ चला गया। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही जो है साइंटिफिक तरीके से ये जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है, युद्ध आप करेंगे बराबर के व्यक्ति से, ऐसे नहीं भीष्म पितामह जो है किसी सोल्जर से लड़ रहे हैं, नहीं, भीष्म पितामह लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे, अर्जुन से लड़ेंगे, ऐसे ऐसे योद्धाओं से लड़ेंगे, तो दुर्योधन भी लड़ेंगे तो भीम से लड़ेंगे, नहीं तो बेचारे मारे जाएंगे ऑर्डनरी सेना के, उनको फूंक मार के उड़ा देंगे लोग तो। और ये जो बड़े बड़े असुर है ये साधारण असुर नहीं है, महारथी है। भीष्म पितामह प्रत्येक दिन जो है 10,000 योद्धाओं को मारते थे, रोज मारते थे योद्धाओं, 10,000 योद्धाओं का डेली मारते महारथी, बताइए अब उसे क्या लड़ेंगे सैनिक जो है ऑर्डनरी सैनिक जो तलवार लेके घूम रहे हैं। ये पावर था उन लोगों का, ये थे हमारे सैनिक, ये नहीं कि अटैक फोन पे बोल रहे हैं, मोबाइल फोन उनके पास एसी रूप में बैठे अटैक, कोई अटैक से क्या होता है। लेकिन जो वास्तव में योद्धा होते थे, क्षत्रिय होते थे, यहां तक कि अकबर तक भी, अकबर के राज्य में भी, अकबर भी जब युद्ध करने जाते थे तो वो खुद युद्ध करने जाते थे, खुद वो भी हाथी पर बैठ के जाते थे। महाराणा प्रताप सिंह हुए, बड़े बड़े राजा क्षत्रिय हुए जयपुर के, राजस्थान के, वो सब जो है राजा जो थे वो युद्ध करते, राजा मान सिंह, ये सब खुद जाते थे युद्ध करने के। तो ये जो है बता रहे हैं बराबर में बराबर के व्यक्ति के साथ युद्ध होता है। उसके बाद बता रहे दूसरा क्या बता रहे हैं, दूसरा ये बता रहे हैं कि जो रथ पे बैठे जो सैनिक है वो पैदल चलने वाले सैनिकों के ऊपर आक्रमण नहीं करें। ये जो आप रथ पे बैठे हो आराम से बैठे हो और वहां से बाण चला रहे हो, है कि नहीं, तो ये भी देखा जाएगा। और तीसरा बता रहे हैं जो हाथी पे बैठे हैं वो भी पैदल चलने वाले सैनिक के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, तीसरा नियम ये। चौथा नियम क्या है, चौथा नियम यह है कि आप कभी भी आश्चर्यजनक आक्रमण नहीं करेंगे। आश्चर्यजनक आक्रमण का मतलब होता है कि आप युद्ध कर रहे हो और पीछे से मार दिया आपने, बहुत आसान है, वो बेचारा लड़ रहा है तलवार से आगे पीछे से आगे घुसा दिया, बस हो गया काम, कितना सिंपल है। तो ये नहीं चलेगा धर्म युद्ध में, यह नहीं चलता है। और देखिए क्या होता है, और बताया कि अगर किसी ने अस्त्र छोड़ दिया है, शस्त्र छोड़ दिया है, वो ऐसे सरेंडर कर चुका है, शरणागत हो चुका है, नियता है, तो उसको भी आप नहीं मार सकते, उसके ऊपर भी आक्रमण नहीं कर सकते। आगे देखिए और आगे बता रहे हैं कि वॉर और युद्ध जो होता है वो सूर्यास्त के बाद नहीं होगा, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं कर सकते आप। ये भी नियम तोड़ा गया था, 14वें दिन जो है 14th डे जयद्रथ को जब मारा गया था तो ऐसे ही मारा गया था, ठाकुर जी की कृपा है सूर्य को जो है उन्होंने ढक लिया और उधर उसको अस्त नहीं होने दिया। लेकिन ये तो ट्रिक्स था, ये तो बेसिकली, लेकिन फैक्ट तो ये है कि 14th डे में जो है जयद्रथ को मारा गया। ये भी जो है नियम ब्रेक किया गया। और बताए क्या क्या नियम ब्रेक किए गए, मल्टीपल वॉरियर, बहुत सारे योद्धा मिलकर जो है एक योद्धा को नहीं मार सकते, है कि नहीं, चार पांच योद्धा मिलकर एक को जो है पकड़ के खत्म कर देते, हो गया बस, खत्म हो गया, हरी बोल हो गया, और क्या, तलवार उठाने से पहले पीछे से मार दिया, अभिमन्यु को मारा गया। ये भी जो है बेसिकली धर्म युद्ध के खिलाफ था, बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा में मिलकर जो है अभिमन्यु को मारा। हम उसे सुन रहे थे, एक लेक्चर सुन रहे थे जिसमें एक व्यक्ति आया था प्रभुपाद जी के पास, एक बहुत बड़ा इंडियन स्कॉलर था, विद्वान था, उसे प्रभुपाद जी पूछा कि प्रभुपाद स्वामी जी बताइए कि अभिमन्यु को इतने सारे योद्धाओं ने मिलकर मारा, उसके मारने पर जो है द्रौपदी जी रोए, माता उत्तरा रोई, युधिष्ठिर महाराज रोए, यहां तक कि भगवान कृष्ण भी रो रहे थे, सब रो रहे थे, सब के सब, अर्जुन भी रो रहे थे, सब रो रहे थे, ऐसा क्यों, ये तो डिस्टर्ब क्यों हो गए, व्हाई दे आर सो मच डिस्टर्ब। प्रभुपाद ने कहा यस दैट इज क्वाइट नेचुरल, अगर आपकी संतान की मृत्यु हो जाए वो भी इस तरह से कि इतना सारे योद्धा मिलकर मार दें तो क्या आप हंसेंगे। प्रभुपाद ने कहा नेचुरली विल क्राई, ये स्वाभाविक है कि माता पिता जो है रिलेटिव प्रियर नियर जो है वो स्वाभाविक है कि वो आंसू बहाएंगे। यस यू डिस्टर्ब, प्रभुपाद ने कहा, फिर प्रभुपाद ने कहा बट देयर सर्विस टू कृष्णा वर नॉट डिस्टर्ब, बट देयर सर्विस टू कृष्णा वर नॉट डिस्टर्ब, उनकी जो सेवा थी कृष्ण के लिए वो डिस्टर्ब नहीं हुए। उसके बावजूद भी जो है अर्जुन ने युद्ध किया, आगे अभिमन्यु के वध के बाद भी अर्जुन ने जो है ये नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूं, और शुरू में कहा था एक बार जब युद्ध प्रारंभ कर दिया अर्जुन ने, फिर उन्होंने तलवार नीचे नहीं रखी, उन्होंने बाण नीचे तलवार नीचे नहीं रखा, युद्ध करते ही रहे अर्जुन उसके बाद भी। तो ये एक नियम टूटा गया था कि बहुत सारे योद्धा ने मिलकर जो है अभिमन्यु को मारा। और ये बताया गया है कि अब दो योद्धा लड़ रहे हैं आपस में, दोनों एक ही सवारी होनी चाहिए दोनों, यानी अगर मैं रथ में बैठ के लड़ रहा हूं, रथ पे बैठा हो तो आप भी रथ में बैठे होने चाहिए, ये नहीं कि नीचे खड़े हो और मैं रथ में बैठा हूं, अगर मैं हाथी में हूं तो आप भी हाथी में होने चाहिए, उनके साथ ही मैं युद्ध कर सकता हूं। तो ये सब बहुत सारे नियम देखे जाते हैं, लेकिन अधिकांश सारे नियम जो है तोड़े गए महाभारत में, इन नियमों का पालन नहीं किया गया। और इसी तरह से देखा गया जो उसको शरणागत होता है उसको जो है हमें नहीं मारना चाहिए जो शरणागत होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये भी जो है इसको भी नहीं स्वीकार किया गया। सात्विकी जो है, सात्विकी जब शरणागत होना चाह रहे थे भूरी शर्मा, तो भूरी शर्मा जब शरणागत होने जा रहे थे उनको भी मारा गया, और सात्विकी ने जो है भूरी शर्मा को मारा, किसके कहने पर? भगवान कृष्ण के कहने पर। भूरी शर्मा जो शरणागत हो रहे थे, लेकिन कृष्ण के आगे मारा उसको, है कि नहीं? धर्म युद्ध में जितने भी धर्म के नियम है सब तोड़े गए, किसके कहने पर? भगवान कृष्ण के कहने पर। आज तो कथा हो रही है, प्रशंसा कर रहे हैं, साथ में ये भी बात सुन ले तो अच्छा है। तो उसके बाद बताया गया है कि अगर कोई मूर्छित है, अगर कोई घायल है, उसको भी तुरंत नहीं मारना चाहिए, अभिमन्यु को इस तरह मारा गया था। और यहां पे अगर कोई व्यक्ति निहत्ता है, असहाय अवस्था में है, उसको भी नहीं मारना चाहिए। अर्जुन ने किसको मारा? कर्ण को मारा, किसके कहने पर? भगवान कृष्ण के कहने पर। कैसा धर्म युद्ध है भैया, तो सारा धर्म जो है अधर्म, धर्म की सामना करने भगवान आ रहे हैं और अधर्म ही अधर्म हो रहा है यहां, कितनी विचित्र बात है कि नहीं? हम कहते हैं लोग सबको बता रहे धर्म अपनाता है सब भी योगे हो गए, महाभारत के युद्ध में शुरू से हम तक तो अधर्म ही अधर्म हो रहा है, ये हो कह रहा है। और उसके बाद फिर बताया कि कमर से नीचे नहीं मार सकते, अगर गदा युद्ध हो रहा है विशेष रूप से तो कमर के नीचे नहीं मार सकती, आज भी रूल है। इवन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी आप देखेंगे, बॉक्सिंग में भी होता है जो हीटिंग बिलो द वेस्ट, तो वेस्ट से नीचे जो है किसी को नहीं मारना चाहिए, ये रूल है, आज भी है ये रूल। तो महाभारत के युद्ध में भी था ये रूल, लेकिन कृष्ण भगवान के कहने पर, ठाकुर जी के कहने पर उन्होंने इशारा किया भीम को यहां पे मारो, तो दुर्योधन को इस तरह से खत्म किया था। इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा गया था, भीष्म पितामह को मारा कैसे गया था? सबने शिखंडी को खड़ा करके, नहीं तो भीष्म पितामह को क्या मारते, अर्जुन तो खत्म हो गए थे। यहां तक भगवान कृष्ण को रथ का पहिया उठाना पड़ा भीष्म पितामह को मारने के लिए, है कि नहीं? तो उसके भी हर परिस्थिति में देखते हैं भगवान कृष्ण जो है वो युद्ध धर्म के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, किसके लिए? भक्तों की रक्षा करने के लिए। यह है उद्देश्य, कौन गया प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणयति, हे कुंती पुत्र घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भक्तों की रक्षा के लिए नियम तोड़ना पड़े वही सबसे ऊंचा धर्म है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है भक्तों की रक्षा करना। और भक्त के लिए क्या सबसे बड़ा धर्म है? भगवान की आज्ञा का पालन करना, यह सबसे ऊंचा धर्म है। सभी कुंथा परो धर्मो यह तो भक्ति रथोष दे अयुद्ध की प्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध। सर्वधर्म क्या है? सर्वधर्म का जब पालन किया जाता है बाकी जितने भी धर्म है वो क्या होते हैं? सेकेंडरी हो जाते हैं, उसका इतना महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि आप परो धर्म में लगे हुए हैं, वो है भागवत धर्म। यही है भागवत धर्म, भगवान कृष्ण की सेवा। उसमें जितनी भगवान गीता में बता रहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम तमाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। केवल आपको क्या करना है? भगवान कृष्ण के साथ रहना है, उनके पक्ष में आना है। जहां भगवान कृष्ण के पक्ष में आ जाते हैं वहां पे संसार का कोई नियम लागू नहीं होता आपके ऊपर। हालांकि भक्त फिर भी समाज में रहते हुए नियमों का पालन करता है आदर्श स्थापित करने के लिए, लेकिन वास्तव में उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा है। ये सर्वोच्च धर्म है, यही सर्वोच्च नियम है, इससे बड़ा ऊंचा नियम कुछ भी नहीं है। तो ये क्योंकि देखिए जब तक देखिए हम लोग अपने असुरों को जो हमारे भीतर जो असुर है हमारे भीतर जो अनर्थ है उनका वध नहीं करेंगे तो विश्व शांति की तो बात ही भूल जाइए, कर ही नहीं सकते। भगवान गीता में क्या बता रहे हैं? अद्वैष सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। भगवान कह रहे हैं कौन व्यक्ति मुझे प्रिय है, सबसे प्रिय है जिसके मन में द्वेष नहीं है,
जो सभी जीवात्माओं के लिए दया रखता है, सबसे मित्रता रखता है, भगवान कहते हैं वो सबसे प्रिय है, वो प्रिय भक्त है सबसे मेरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि द्वेष, और जब द्वेष और अंदर से जो छल कपट है उसका ना विनाश होगा तो युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति जो है भगवान का भक्त बनेगा। क्योंकि ये योग्यता किसमें आएगी, ये गुणवत्ता किसमें आएगी? जो भगवान का भक्त है वही अन्वेष सर्वभूतानाम हो सकता है, वही मैत्र करुण एवं च हो सकता है। और ये जब होगा तब देखेंगे पूरे विश्व में शांति शांति होगी, युद्ध होगा ही नहीं कभी, क्योंकि हिंदू तो भीतर से लड़ना है। अगर भीतर से आप जो है शांत हो गए, भीतर से आपकी चेतना पवित्र हो गई, मन पवित्र हो गया, काम क्रोध लोभ और मोह मद मांसों ने छुटकारा पा लिया, तो समाज में शांति शांति है, समाज में शांति शांति है। समस्या यह है कि देवता जो है भगवान को नहीं स्वीकार कर रहे, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे, इसी कारण से युद्ध हो रहा है। जितने वैज्ञानिक है वो यही तो योजना बना रहे हैं और शत्रुओं को क्या दे रहे, सहारा दे रहे हैं, शत्रुओं को बना बना के दे रहे हैं, ये लो न्यूक्लियर बॉम्ब ले लो, एक न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे तो बस हो गया, काफी है, पूरी दिल्ली के लिए काफी है, भारत के लिए काफी है, पूरे संसार के लिए काफी है, इतना पावरफुल है न्यूक्लियर बॉम्ब, सब जल के राख हो जाएंगे। क्यों बनाया? वैज्ञानिकों ने बनाया। किसके लिए बनाया? असुरों के लिए बनाया, असुरों को बल देने के लिए बनाया। इसे प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद अगर युद्ध हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, भक्तों को क्या करना चाहिए? प्रभुपाद का जस्ट चार हरे कृष्ण लीला पर, प्रभुपाद लीला पर सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो प्रभुपाद घर में कचौड़ी खा रहे थे, कचौड़ी खा के कचौड़ी बना के खा रहे थे, गर्म गर्म कचौड़ी ठाकुर जी के लिए बनाया था, गोविंद देव जी के लिए, और बड़ा आनंद कर रहे थे प्रभुपाद, चार्टिंग हरे कृष्ण। तो भक्त जो है वो किसी समय भी भयभीत नहीं होते हैं, युद्ध हो या ना हो उनको तो वही करना है जो करना है पहले, उनकी एक्टिविटी उनका कार्यकलाप जो है कभी नहीं बदलेगा युद्ध के कारण, भले युद्ध हो या ना हो हमें वही करना है, हमारा बिजनेस वही है। लेकिन अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो उस समय हमारा जो है कार्य सबसे उत्तम है, हमारा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? अगर हम नहीं चाह हमने चाहते नहीं है कि युद्ध हो, आज अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं अगर हो रहा है अभी तक, उसका कारण जानते क्या है? वो है संकीर्तन। संकीर्तन के कारण विलंब हो रहा है, अगर संकीर्तन ना हो तो युद्ध हो कब का हो गया था, कब तक हम खत्म भी हो गए होते, छुट्टी होगी थी हम सब की। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से क्योंकि संकीर्तन हो रहा है, ये यज्ञ हो रहा है, इस कारण से कितना आदर्श बाप हो रहा है पूरे संसार को, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं, जब पशु हत्या होती है, जब जीव हत्या करते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि सब आप देखते हैं संसार में युद्ध होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है पशु का भक्षण करते हुए मांस भक्षण करके जो है उसके हृदय में क्या हो जाता है? द्वेष। उसके हृदय में दूसरों के लिए बैर की भावना जागृत हो जाती है और उसका परिणाम क्या होता है? युद्ध ही युद्ध होता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि भक्त जो है वो कभी किसी से शत्रुता नहीं रखता। अनाथ शत्रु शांत साधु साधु भूषणम, वो किसके हृदय में कोई शत्रु नहीं है, उसके लिए सब उसके लिए मित्र है, उसके शत्रु बन जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन वो किसी को शत्रु नहीं बनाता है। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि अगर लगता है कि ये मेरा शत्रु है, सामने वाला मेरा शत्रु है, ये मेरे अपने कुकर्म है, अपने कुकर्मों के कारण मेरा ये संकर्म है, मेरा कुकर्म है, इस कारण से जो है मेरा शत्रु बना हुआ है, और ये अच्छा है कि मुझे तो इतना कम करना पड़ रहा है, इसलिए अच्छा है कि मैं कष्ट उठाऊं, विरोध करने से अच्छा है कि मैं इसको सहन कर लूं, सामने वाले व्यक्ति को मैं सहन कर लूं, ये तो मेरा प्रारब्ध है। अगर ये मुझसे द्वेष कर रहा है और मेरी बुराई कर रहा है और मुझे मारने की योजना बना रहा है, ये अपने मेरे कर्मों का फल है। कई बार होता नहीं होता है, कई बार आप देखते हैं यार जैसे किसी से ना देना वो आपका शत्रु बन गया, आपने कभी उससे बात भी नहीं की, ना उसके बारे में कुछ कहा, ना उसके खिलाफ कुछ किया, आपका शत्रु बन जाता है। होता ही नहीं होता है, कई बार होता है ऐसा, उसका कारण यही होता है हमारे अपने कर्मों का फल है, वो शत्रु बना हुआ है आज। तो इसलिए हम भौतिक धरातल पर कभी किसी को ना मित्र माने ना किसी को शत्रु, वास्तव में देखा जाए तो शत्रु शत्रु ही है। जब तक कृष्ण भक्ति का कोई अपमान नहीं लेगा तब तक हर जीव जो है हमारा शत्रु बना रहे और हम भी उसके शत्रु बने रहे। क्यों? क्योंकि हम उसके स्वार्थ के लिए, असली जो स्वार्थ है उस स्वार्थ को पूरा न करके केवल देहात्म बुद्धि के कारण जो स्वार्थ उत्पन्न हुआ है उसको पूरा करने में लगे, इसलिए हम उसके कभी मित्र नहीं बन सकते, कभी उसके हितेश ही नहीं बन सकते, हम अभी हमेशा उसके शत्रु हैं। एक बार ऐसे बच्चा एक बेटा आया था किसी घर से, तो वो आने लगा भक्तों के संग में। तो उसने कहा कि उसके पिताजी ने कहा कि बेटा देखो तुम मंदिर जा रहे हो और अब जो मंदिर भी ज्वाइन कर लिया तुमने, हमने आपको कितना खिलाया पिलाया जीवन भर, और आप जो है मंदिर चले गए तो अच्छी बात नहीं है। वो बेचारा मेच्योर नहीं था बेचारा भक्त, उसने भगवत गीता का श्लोक कोट कर दिया, यज्ञ शिष्टाशी नशंता मुचंते सर्व किल विषय भूल देते थे गम पापा पचन देते आत्म कारण, मैंने तो जीवन भर पाप खाया, मैंने तो प्रसाद पाया ही नहीं, आप कह रहे खिलाया पिलाया मुझे, पूरे जीवन भर तो पाप खाया मैंने। तो इसलिए कोई हितेशी नहीं है हमारा इस संसार में, कोई मित्र नहीं है, हितेशी केवल हमारे भक्त है, हमारे गुरु हैं, हमारे वैष्णवगण हैं, ये वैष्णव समाज ही हमारा हितेशी है, जो बताएंगे आप गुरु में कि आप एक नंबर के गधे हो, एक नंबर के बेवकूफ हो, इन स्थिति में लगे हो, अपना जीवन जो है बर्बाद कर रहे हो, आ जाओ हरि नाम लो, अपने को बचा लो, नहीं तो मारे जाओगे बुरी तरह से, पूछेगा नहीं आपको अंत काल में कोई, माया आपको लताड़ेगी और अंत में जो है माया आपको इस संसार का नग्न सच दिखाई, नेकेड ट्रूथ, और समय आप रोगे फिर भी आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो ये कहने का मतलब यह है कि भक्त जो है हमें जो है समझाते हैं, भक्त बताते हैं, साधु हमें बताते हैं करोड़ों शब्दों में कि वास्तव में आप क्या हो, एक नंबर के एक दर्जे के बेवकूफ हो आप, अपनाओ कृष्ण भक्ति को, कहां समय उस संसार में माया की गोद में लेटे हुए अभी भी, आ जाओ किसी की सेवा में लग जाओ राधिका रमण जी की सेवा में, इसी में आपका भला है। इसलिए प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा बताया, प्रभुपाद ने लेटर लिखा है रामेश्वर स्वामी को 1973 में, प्रभुपाद लिख रहे हैं देयर इज नो डाउट अबाउट इट टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ग्रंथों का वितरण जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, टेम्पल इज अ प्लेस नॉट फॉर ईटिंग एंड स्लीपिंग, ये हमारा मंदिर केवल खाने और सोने के लिए नहीं है, घंटी बजाने के लिए नहीं है सिर्फ, बट एज अ बेस फ्रॉम विच वी सेंड अबाउट आउट अवर सोल्जर्स टू फाइट विथ माया, माया के साथ युद्ध करने के लिए ये हमें यह स्थान मिला है। अगर हम इसे ध्यान से सोचिएगा, अगर आप ध्यान से सोचिए, एक बात बताना चाह रहे हैं इससे पहले कि आगे बढ़े हम, अगर हम ये माया के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ते हैं तो क्या होगा बताइए, बताओ जी करुणा चंद्र प्रभु, अगर हम युद्ध नहीं करते माया के खिलाफ, वैसे तो युद्ध करने में सक्षम है नहीं, हम तो प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद की कृपा से, अगर हम माया के खिलाफ युद्ध नहीं करते हैं तो क्या होगा, हावी क्या होगी, हम तो है ही नहीं, फिर खत्म हो गए, हमने कुछ किया ही नहीं, हावी का मतलब क्या है, हम तो आक्रमण किए नहीं तो बाहर निकलने से पहले ही खत्म हो गया, हम तो वैसे ही खत्म है। कहने का मतलब यह है कि अगर माया के खिलाफ अगर हम युद्ध नहीं छेड़ते हैं तो हम स्वयं भी माया में हैं, ये पॉइंट समझिएगा। उसने किसी ने कहा कि प्रभु जी कलौ शुद्ध संभव, बहुत अच्छी बात है, कलयुग में शुद्धता की प्रधानता है, लेकिन अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे संकीर्तन नहीं करेंगे तो हम भी शूद्र ही हैं, बुरा मानो, क्योंकि यज्ञ कौन करता है, यज्ञ तो ब्राह्मण करते हैं, वैष्णव ब्राह्मण करते हैं, अगर ब्राह्मण यज्ञ नहीं करेंगे समाज में तो फिर हम तो महाराज वेण के हो गए अनुयायी, महाराज वेण ने सारे यज्ञ बंद करा दिए राइट, और यथाचार फैला दिया चारों तरफ, महाराज पृथु आए जवाब तो यज्ञ फिर से शुरू कर दिए। अगर हम संकीर्तन नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, माया के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा तो हम स्वयं माया में हैं सर। फिर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, फाइट विद माया मीन्स, अब युद्ध माया से युद्ध करने का मतलब क्या है, फाइट विद माया मीन्स टू ड्रॉप थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ बॉम्ब्स इनटू लैप्स ऑफ द कंडीशन सोल्स, ये हमारा बॉम्ब है, ये है हमारा बॉम्ब, सबके सर पे मारो ये और आप देखिए कि माया ध्वस्त हो जाएगी, ये माया के खिलाफ लड़ने का सबसे बड़ा असर है और इसमें महा महा महारथी है, जानते कौन, शिल प्रभुपाद, ये बॉम्ब के साथ महारथी भी है आपका, देखिए हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है आक्रमण करने की, माया सामने आएगी पता नहीं चलेगा कहां गए हम, फूंक मार के उड़ा रही है हमें तो, लेकिन जब आपके जब ग्रंथ हो गए आपके हाथ में तो आपके साथ महारथी है, और प्रभुपाद जी नहीं है, भीष्म पितामह है, सब है इसमें, महाभारत का पूरा जो है जितने भी महारथी हुए हैं सब श्रीमद् भागवत में है, सारे महारथी आपको मिलेंगे श्रीमद् भागवत में, प्रभुपाद जी के ग्रंथों में, इन महारथियों के साथ जब आप बाहर जाएंगे और एक बॉम्ब लेके जाएंगे, किसी मजाल है आपको नहीं गिरा सके। ये माया से लड़ने का ये सबसे बड़ा अस्त्र है। और आगे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, फाइट विद माया, वी शुड ड्रॉप थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ बुक्स इन द लैप ऑफ द कंडीशन सोल, जस्ट लाइक ड्यूरिंग वॉर टाइम द बॉम्ब्स आर रेनिंग फ्रॉम द स्काई लाइक एनीथिंग, सो यू आर द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। तो इस तरह से हम अगर बॉम्ब का सहारा ले, हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिए जो ग्रंथ है, इन दिव्य ग्रंथों को सहारा लेके, ये ग्रंथ को अगर हम अध्ययन स्वयं करेंगे, स्वयं को अगर हम तैयार करेंगे, ग्रंथों का अध्ययन करके सक्षम बनेंगे, तो फिर हम समझ पाएंगे कि वास्तव में प्रभुपाद हमारे साथ में है। बाहर जाकर ग्रंथों लेके जाए पता कैसे देगा प्रभुपाद हमारे साथ, तब हमें पता चलेगा। जब हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को निरंतर रेगुलर हम पढ़ते रहेंगे, तो वो हमारे अंदर शक्ति आएगी, वो समझ आएगी कि हाँ ये बात सही है, प्रभुपाद जी हमारे साथ में है। हम इन ग्रंथों को बाहर लेके जा रहे हैं, जो भी ग्रंथ को पकड़ेगा क्या होगा, उसका वध हो जाएगा, उसकी दूषित चेतना का वध हो जाएगा, कृष्ण भक्ति हृदय होगी, वो भी कृष्ण की सेवा में लग पाए। तो इसलिए बहुत ही अच्छा अवसर है, ये जो बताया प्रसंग बताया है, देवता और असुरों के बीच में जो संग्राम हो रहा है, और ये संग्राम अभी भी चल रहा है, और आप सब योद्धाओं की आवश्यकता है, और आप सब आइए इन ग्रंथों को उठाइए और हरिनाम लीजिए, हरिनाम दूसरों को भी सुनाइए, देखिए कितना जल्दी है हमारी विजय होगी। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, संकीर्तन विजय, संकीर्तन की विजय होती है इसी तरह। संकीर्तन की विजय कब होती है, जब हम संकीर्तन करते हैं। अगर आप संकीर्तन ही नहीं करोगे तो विजय कैसे हो जाएगी संकीर्तन? संकीर्तन अपने आप सुना होगा, कौन करेगा संकीर्तन? भक्त करेंगे संकीर्तन। तो जब भक्त संकीर्तन करेंगे तो क्या होगा, बड़ी आसानी से माया पर विजय प्राप्त। एक बार पूछा किसी से प्रभुपाद, प्रभुपाद जब बाहर जाते हैं संकीर्तन में माया बहुत प्रभावशाली होती है, रजोगुण तमोगुण सब है, बड़ा दिक्कत हो जाता है, प्रभुपाद ने कहा, एकदम प्रभुपाद आंसर दे रहे, वेन यू आर इन संकीर्तन माया कैन नॉट टच यू। प्रभुपाद एक ही लाइन में आंसर दिया उसी समय, उसी समय प्रभुपाद ने बोला, वेन यू आर इन संकीर्तन माया कैन नॉट टच यू, माया छू नहीं सकती आपको, आप ग्रंथों को लेके जाते हैं जब बाहर। तो ये आप उत्साह बनाए रखे, और आने वाले दिसंबर बुक मैराथन के लिए अभी से ही तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ये नहीं कि जो है पूरे साल जो है सोए पड़े रहे और युद्ध जब सामने आ रहा है तो उस समय बम उठा के बाहर घूम रहे हैं, नहीं। आप देखिए इंडियन आर्मी में जाके देखिए, या इंडियन एयरफोर्स में जाके, पूरे साल वो लोग उनकी ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, पूरे साल तैयारी करते हैं, और जब युद्ध आता है तो तैयार होते हैं, राइट। तो इसी तरह से हमें भी तैयार रहना है, और इस अस्त्र और शस्त्र के साथ। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, कोई समीक्षा है?
हरे कृष्णा, नाइस लेक्चर गुरुजी। गुरुजी आपने बताया कि देवी देवता आपकी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती अपनी स्वीकार करने के बाद भगवान की शरण ले लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और सत्ता को भी स्वीकार करते हैं। तो हम भक्त समाज में समटाइम्स जब हम कुछ गलती करते हैं तो आपस में आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं, उसके बाद कोई मेंटर है या सीनियर डिवोटी है वो अपनी क्लेरिफिकेशन भी देता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए या उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए फिर?
किसको छोड़ देना चाहिए?
जो मेंटर है या सीनियर डिवोटी है वो अपनी गलती ना मानने के बाद उसको उसको क्लेरिफिकेशन देता है, उस चीज का क्लेरिफिकेशन, मेरी गलती नहीं है वो चीज की।
तो नहीं, कौन क्लेरिफिकेशन देता है? मेंटर क्लेरिफिकेशन देता है?
जो सीनियर डिवोटी है या मेंटर है,
किसको क्लेरिफिकेशन देता है?
जो पूछ रहा है या कुछ भी बात है या उससे गलती हुई है सीनियर डिवोटी से,
जूनियर से गलती हुई है, सीनियर से गलती हुई?
सीनियर
से गलती हुई है। तो जूनियर को क्या एक्सप्लेनेशन देगा?
नहीं, उसको क्लेरिफिकेशन देता है, उसको स्वीकार नहीं करता कि भाई मैं मेरे से कोई गलती हुई है।
नहीं, पहली बात तो यह है कि जूनियर ने क्या बोला सीनियर को कि भाई आपकी आपसे गलती हुई है?
नहीं, कोई ऐसी चीज है जो उसको ठीक नहीं लगी या
नहीं, एक बात समझिएगा पहले कि ये बात क्लियर होना चाहिए कि वो सीनियर व्यक्ति को अप्रोच क्यों किया है जूनियर व्यक्ति ने कि आपकी गलती ये है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर सीनियर्स को करेक्ट करना है तो अच्छा है कि सीनियर्स के थ्रू जाए तो अच्छा रहेगा, किसी सीनियर डिवोटी का सहारा लें अगर उनको करेक्ट ही करना है तो, या फिर विनम्रता पूर्वक जो है पूछे कि प्रभु जी मुझे ऐसा लगा आपके इस आचरण से इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन देंगे। उसके बावजूद भी वो समझाते नहीं, ऐसा नहीं है, वो क्लैरिफाई करते हैं, तो उसको श्रद्धा से स्वीकार करिए। और फिर भी अगर डाउट है किसी और सीनियर से कंसल्ट करिए। कहने का मतलब है अप्रोच करने का तरीका होना चाहिए, आप सीरियस अप्रोच अगर कर रहे हैं तो इट शुड बी डन वेरी पोलाइटली विद अ हम्बल मूड। अगर हम जाके बोलेंगे आपसे ये गलती हुई है, आप गलती को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ये अप्रोच ही गलत है। पहली बात ये अप्रोच ही गलत है। सो इवन इफ यू हैव डाउट वी शुड चेक कि प्रभु जी मैंने सुना ऐसे आपके बारे में, मुझे आई एम वेरी वेरी आई एम अ जूनियर डिवोटी बट आई हैव अ डाउट आपके बारे में, मुझे शंका आ रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्लीज ये डाउट क्लियर करें। और आप देखेंगे जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, इस तरह से हम्बल रहे पूछेंगे, आप देखिए 99% आपको डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। एसम्शन में गड़बड़ होता है, एसम्शन स्क्रिप्चर बैंक के बहुत खतरनाक है। अनुमान प्रमाण नहीं होना चाहिए, शब्द प्रमाण है हमारा शास्त्र, शब्द प्रमाण के आधार पर होना चाहिए। अनुमान प्रमाण के आधार पर करेंगे तो गलतियां हो सकती है, संभावना है उसमें, इसलिए अनुमान लगा दिया, हाँ प्रभु ऐसे किए थे, ये देखो एक से गलती हो गई, आपने ऐसा क्यों किया, हम तो आपसे बहुत उम्मीद कर रहे, हम तो आपको महाभागवत सोचते थे, हमें क्या पता था आप इतने गिर चुके हैं। सीनियर क्या किसी को भी अप्रोच कर रहे हैं, इवन इक्वल्स ऑल्सो, इवन जूनियर्स ऑल्सो, यही अप्रोच रहे हैं तो अच्छा है। जूनियर भी ऐसा है तो ना उसको लताड़ना है, अभी तुम क्या हालत है तुम्हारी, देखो अभी अभी भी आया, अभी से गिर गया तुम, अभी खड़े भी नहीं हुए उससे पहले लड़खड़ा रहे हो, ये भी तरीका गलत है। ये ऐसे अब जूनियर को भी ऐसे बोलेंगे वो फिर दोबारा माला कभी करेगा नहीं जिंदगी में, वो तो इन्फेंट है भैया, वो गलती तो करेगा ही। और अगर आप कृपा नहीं करोगे तो कौन कृपा करेगा उसके ऊपर, दया तो आपने दिखानी है उसके ऊपर, वो तो गलती करने के लिए हमें, हमसे भी गलती हुई है, हम संसार में हम सब आए हम सब गलती करें इसलिए तो आए। जूनियर सीनियर क्या है, हमने भी गलती किया तभी हमें आए, आपने भी गलती है आप भी आए, थोड़ा पहले आ गए, हम पहले गलती करने वाले हैं बाद में गलती करने वाले हैं, इतना ही डिफरेंस। हमने गलती पहले की, आपने बाद में गलती की, इसका मतलब थोड़ा कि मैं सीनियर हूं। खैर मेरे वेस्टर्न कल्चर दे कल्चर में मेंटेन करना है, हमें हर चीज का एक तरीका होता है करने का, है ना। देखिए इक्वल्स भी है तो फ्रेंडशिप हमारा स्पिरिचुअल बेसिस है, उसका कृष्ण मॉडल बेसिस है, उसमें भी जो है हमें मटेरियल टर्म्स नहीं लागू कर सकते हैं, है ना, उसमें भी हंसी मजाक में अगर आप टाल देंगे वो भी ठीक नहीं है। तो इक्वल्स के साथ तो और फ्रेंडली वे में डील करना है, तो उनको हेल्प करने के मूड में डील करना चाहिए कि ही माय फ्रेंड, ये मेरे इक्वल है, आई मस्ट हेल्प हिम, उस तरह से जो है उनको अप्रोच करें, उनके जो समस्या है उनको समझें, उनको हेल्प करने का प्रयास करें। डिवोटी को कभी भी किसी को अप्रोच करना है तो इस मूड से अप्रोच करना चाहिए, हाउ कैन आई हेल्प दिस डिवोटी, ये नहीं हाउ कैन आई डिस्ट्रॉय दिस डिवोटी, कैसे इसके भक्ति को नष्ट करूं, मैं भी देखता हूं ये कब से अब माला कैसे करेगा, इसको मैं नष्ट करना चाहता हूं, जड़ से खत्म करना चाहता हूं। तो ये अप्रोच ही गलत है, हमें अप्रोच करना चाहिए भक्तों को हेल्प करना, हेल्पिंग मूड से, हेल्पिंग मेंटालिटी जिसे कि हाँ मैं भक्ति सहायता करना चाहता हूं, आई वुड हेल्प हिम, ये बेचारा देखिए भटक गया है, ये मैं हमने एक दोनों एक ही एक ही टाइम में ज्वाइन किए थे, ये क्या हो गया प्रभु जी को, हम तो एक ही टाइम में ज्वाइन किए थे और सब कुछ अच्छा लग रहा था, अचानक क्या हुआ, आई वॉन्ट हेल्प यू प्रभु, यू आर माई फ्रेंड। अगर इस भाव इस तरह का भाव रखेंगे तो कितने सारे भक्त चले गए वो नहीं जाते, जस्ट बिकॉज हमारा डीलिंग ठीक नहीं रहा डिवोटीज के साथ, वो भक्त चले गए। सुधरने का हमने किसी को मौका ही नहीं दिया, हम कौन से गोलोक धाम वृंदावन से उतरे यहां, हम भी यही दिल्ली से ही नर्क से ही है, हम भी अपने आप को सुधारने का प्रयास कर, दूसरा भी सुधारने का प्रयास कर रहा है, हम लोग थोड़ा पहले गलती किए हैं, ये बाद में गलती की है, ये डिफरेंस है। तो लेट अस ऑल ट्राई टू इंप्रूव आवर सेल्फ, हम अपने को तो सुधारें पहले, हम अपने को भी सुधारें, राधे अगर अप्रोच करें सीनियर को, पूछे प्रो भी मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहे।
थैंक यू वेरी वेरी नाइस। मुझे बट एक क्वेश्चन और है, जैसे आपने बताया कि एक असुर होता है वो पीछे से वार करता है, समटाइम्स पीछे से वार कर दिया और उसका काम कर दिया, तो अपने भी समाज में जैसे भक्त समाज में लोग रहते हैं, फेस टू फेस समटाइम्स हम बहुत प्रेस करते हैं दूसरे को और पीछे से बहुत निंदाएं करते हैं और पीछे से और मतलब कब्री खोल देते हैं एक तरह से, तो कैसे ट्रीट करें।
वही बात है ना, अभी आपने जो बताया सेम पॉइंट है, तो बेसिकली जब डीलिंग विद डिवोटीज का मतलब है कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होना चाहिए, अगर आपको डाउट है किसी मतलब आप डायरेक्ट जाके उनसे कंफ्रंट करिए, उनसे पूछिए हम्बल वे में बताइए कि क्या प्रभु जी ऐसा था, मैंने आपके बारे में सुना है। राजा तक पीछे पीछे बोले, पीछे से बुजुर्ग बोलते हैं, डरपोक होते हैं वो पीछे बोलते हैं, आपके अंदर गट्स नहीं है इसलिए आप पीछे बोल रहे हो। और जितना आप सुनाओगे किसको, किसी को सुनाओगे ना, किसी को किसी के बारे में सुनाओगे, और जिसको आप सुनाओगे उसका फेथ कम हो जाएगा जिसके बारे में सुन रहा है। आपका आपका खुद का नुकसान तो हो रहा है और सुनने वाले को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो स्टे फॉरवर्ड होना बहुत जरूरी है फ्यूचर लाइफ में। अगर हम जो है किसी की कमियां देख रहे हैं तो उसे जाके बात करें सीधा, और नहीं कर सकते तो इसका मतलब बुजदिल है, डरपोक है, हम लोग हमारे अंदर गट से नहीं है, कैंडिंग क्या कर रहे हैं फिर आप। अगर आपको किसी पर डाउट है सामने बुला के बात करो, वेरी सिंपल, आप देखेंगे आपके 99.9% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। और वो खुश होगा, वो बात अगर वो मेच्योर्ड है वो खुश होगा, देखिए यार ये मेरा असली मित्र है, मुझे खुद आके बता रहा है, मेरे अच्छे के लिए उधार है, ही विल बी हैप्पी टू बी सिंसियर। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।